इसका अगला श्लोक है, अगला अभी जो श्लोक का अर्थ हमने समझा है, एक बार उसकी धुनी सुन लेते हैं, उसके बाद अगला श्लोक पढ़ेंगे।
संजय उवाच। संजय ने बोला, व्यूहकार व्यवस्थित संगठित व नियंत्रित पांडवों की सेना को देखकर तो स्वभाव से भ्रष्टाचारी दुष्चिंध करता दुर्योधन ने घड़ी जैसे बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण के सामने ही पास जाकर बड़े गर्व से एक राजा की तरह अपने गुरु से यह वचन बोला। संजय उवाच। संजय ने बोला, व्यूहकार व्यवस्थित संगठित व नियंत्रित पांडवों की सेना को देखकर तो स्वभाव से भ्रष्टाचारी दुष्चिंध करता दुर्योधन ने घड़ी जैसे बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण के सामने ही पास जाकर बड़े डर से एक राजा की तरह अपने गुरु से यह वचन बोला।
अगला श्लोक है, पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। पश्य एताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। लोग फिर पढ़ रहे हैं, पश्य एताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका संधि विच्छेद है, पश्य एताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। एक बार फिर से संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। पश्य एताम पांडु पुत्रानाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। इसका अर्थ है आचार्य तव धीमता, हे आचार्य अपने बुद्धिमान। आगे है शिष्येन द्रुपद पुत्रेन व्यूढ़ाम पांडु पुत्रानाम। इसका अर्थ है शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा युव रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की। एताम महतीम चमुम पश्य, इस विशाल सेना को देखिए। वैसे तो ये सब पढ़ने से आप समझ रहे होंगे कि संस्कृत का जो शब्द का सेटिंग है और शब्द संस्कृत की जो वाक्यों की रचना है वो थोड़ी अलग होती है, इसलिए हिंदी का वाक्य जिस हिसाब से बनता है उसी हिसाब से साइड में संस्कृत के शब्दों को सेट किया है। और श्लोक में ऊपर जो शब्दों की रचना है वो अलग है, इसीलिए उसी सीरियल से पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा ठीक से समझ में आएगा। अभी ये जो बोल्ड अक्षर है अर्थात जो डार्क अक्षर में अर्थ लिखा हुआ है उसे एक बार पढ़ रहे हैं। हे आचार्य अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा युव रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। यह क्लैरिफिकेशन में लिखा है विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले है आचार्य। तो शास्त्र जो है वो मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए हुए हैं और विमनुष्य जो है वो विकारी है, इस हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले है आचार्य। तो द्रोणाचार्य के लिए तो कई जगह पे अभी शब्दार्थों में हमने पढ़ा है इसलिए इसे और क्लियर नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य के लिए बोला हुआ है आचार्य अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा। तो द्रोणाचार्य के शिष्य ही धृष्टद्युम्न भी है, तो इसके लिए तो महाभारत में भी दिखाया हुआ है कि उनका शिष्य था। और द्रुपद राजा द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य के मित्र थे, बाद में उनकी कोई बात से लड़ाई होकर के वो अलग अलग हो जाते हैं, इस तरह दिखाया है महाभारत में। इस हिसाब से यहाँ भी वही बात आई है कि अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा युव रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। तो इसके लिए बताया कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इतने थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित, तो वैसे तो हम देखते हैं कि यज्ञ की स्थापना की शुरुआत जो है सन 36 से ही हो गई, और ज्यादातर बेसिक नॉलेज का विस्तार जब से कराची से निकल के आए तब से हुआ, तो उस समय से लेकर के अभी 80 साल लगभग होने जा रहे हैं बेसिक नॉलेज को फैलते फैलते। इसीलिए देश विदेश में उनकी संख्या भी सेंटर्स की ज्यादा है, तो उनकी तुलना में एडवांस पार्टी का कार्य जो 76 से शुरू हुआ है, तो अभी लगभग 40-45 साल होने जा रहे हैं, अर्थात उनसे आधा समय। तो जितने भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बैठे बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी है, मान मर्तबे वाले है, या जो कल्पवृक्ष के चित्र में बाबा जिनका नाम लेते हैं, इशारा देते हैं, तो उन सबके अर्थात कौरव सेना के जो भी मुखिया है उनके बुद्धि में ये बात चलती है कि एक ही व्यक्ति लग करके इतना तुरंत एडवांस वालों की इतनी बड़ी सेना कैसे तैयार की, ऐसे संकल्प तो उनके मन में आते ही है। तो इस हिसाब से और ये भी बात आती है कि बेसिक से टूट टूट के आखिर लोग एडवांस में जाने का क्या कारण है। तो यहाँ ये भी बताया है कि ज्ञान शस्त्र सज्जित, अर्थात एडवांस नॉलेज का मुख्य आधार है ज्ञान, जिसके लिए मुरलियों में भी बाबा ने बोला है कि ब्राह्मणों का धंधा ही है ज्ञान की लेन देन करना। अगर ज्ञान की लेन देन नहीं करते हैं तो ब्राह्मण नहीं है। तो एडवांस नॉलेज का मुख्य आधार है नॉलेज अर्थात ज्ञान। तो इस हिसाब से ज्ञान के आधार से ये संगठन आगे बढ़ता है और पर्वताकार अर्थात बड़े रूप में, पर्वत को बड़े रूप में या विशालता से प्रतीक मान करके शब्द बोला है, इसलिए यहाँ बताया कि इतने इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। इसीलिए ज्यादातर इसके पहले भी जहाँ कहीं भी डीके की सर्विस होती रही तो यही होता था कि कहीं भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बाहुबल चलाया है तो एडवांस वालों के लिए यही डायरेक्शन था कि किसी भी हालत में हमें बाहुबल नहीं चलाना है, क्योंकि हमारा आधार ही ज्ञान है। और ये तो हम भी जानते हैं कि मुरलियों में बोला है बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे और योग बल वाले ईश्वर की बादशाही को पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ हमारा मूल आधार है धर्म युद्ध करने का ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। इसीलिए जितना ज्यादा मुरलियों का नॉलेज होगा तो वो उतना ही आगे चल के इस धर्म युद्ध के इसमें आगे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया है कि ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना। तो यहाँ नंबर वार सभी पुरुषार्थी है और हमें अपने हिसाब से, क्योंकि हम सब रूहानी सेना के इस पांडव सेना के सैनिक है, तो अपने लिए हमें शिव बाबा को सहयोग देने के लिए जितना ज्यादा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, या तो ज्ञान का भंडारा हम अपने बुद्धि में धारण करेंगे, उतना ही शिव बाबा को इस धर्म युद्ध में मदद कर सकते हैं। इस हिसाब से एक बार दोबारा इसका अर्थ पढ़ रहे हैं, विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले, ऐसा शास्त्र तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं और मनुष्य तो विकारी होते हैं, और उनके आचार्य या प्राचार्य है द्रोणाचार्य, इसीलिए उनके लिए बोला है कि विकारी मानव निर्मित हे शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले, हे आचार्य, आपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। तो धृष्टद्युम्न जो है वो पांडव सेना के सेनापति है और उनके द्वारा ये सेना की सेटिंग की गई है, उनको संगठित रूप में नियंत्रित रूप में रखा हुआ है। और धृष्टद्युम्न जैसे रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर को बताया है, इसी हिसाब से धृष्टद्युम्न जो है वो पांडव सेना के सेनापति बताए हैं और उनके द्वारा ये सेना जो है वो संगठित की हुई है, सेट की हुई है। तो ये जो सेना है ये सेट कैसे रह सकती है? अर्थात ब्राह्मणों की दुनिया में तमो प्रधान अवस्था में जो वाइब्रेशंस की टकराहट, संकल्पों की टकराहट चलती है या कई बार वाचा की भी टकराहट चलती है, तो जब तक ऐसा संघर्षमय वातावरण है तब तक ये सेना संगठित नियंत्रित नहीं कही जाएगी। इसके लिए एक ऑडियो में बोला है, 252 नंबर का ऑडियो, 252 नंबर का ऑडियो, कि जब एक दो का सहयोग होगा तभी घेराव डाल सकते हैं, और जहाँ ऐसा ब्राह्मणों का घेराव होगा वहां माया घेराव डाल नहीं सकती है। सहयोग हो और शुभ चिंतन पने की भावना हो तो माया के घेराव के अंदर आ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पांडवों की ये सेना तभी संगठित और नियंत्रित होगी जब एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होगी और शुभ चिंतक पने की भावना होगी। तो इस तरह से श्लोक का अर्थ हो गया। एक बार इसका धुनी सुन लेते हैं और अर्थ सुन लेते हैं दोबारा।
अश्येतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अश्येतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
आपने अभी इस श्लोक का उच्चारण सुन लिया है। वैसे कईयों को लग रहा होगा कि बार बार इस तरह से पढ़ना और सुनना क्यों, मतलब इसमें समय जा रहा होगा, लेकिन उद्देश्य यही है उच्चारण सुनने का या श्लोक का अर्थ दो बार पढ़ने का, ताकि जब हम पढ़ रहे हैं उसी समय आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो साथ ही साथ इसका अर्थ भी याद हो जाएगा। इसके लिए अलग से हमें समय नहीं देना पड़ेगा, साथ साथ ही पढ़ाई के साथ साथ इसका अर्थ भी बुद्धि में आ जाए तो समय बचेगा सभी के।